શાંતિ. આજ ભઠ્ઠી મેં વિશેષ ક્લાસ કરાને કે લીએ આપસે લેનદેન કરને કે લીએ હમારે બીચ બાબા કે દિલ તક તનસીન નૂરે રત્ન અથક સેવાધારી બેહદ સેવાધારી આદરણીય મોહનભાઈ પધારે હે. આપ જ્ઞાન સરોવર મેં જબ સે બના તબ સે અપને લૌકિક સર્વિસ પ્રેઝાઇન કરકે બાબા કી ઇસ બેહદ સેવા મેં અપના જીવન સમર્પિત કિયા હૈ. વૈસે તો આપ લાસ્ટ અમદાવાદ ઓએનજીસી મેં એન્જિનિયર કે રૂપ મેં સેવા દે રહે થે ઓર અભી ભી સાયન્ટિસ્ટ એન્જિનિયરિંગ વિંગ કે આપ નેશનલ કોઓર્ડિનેટર ભી હો. ન સિર્ફ એક હી વિંગ, વો તો નિમિત્ત સંભાલતે હી હૈ, જિમ્મેવાર હૈ હી શુરુ સે લેકર, લેકિન જ્ઞાન સરોવર મેં જબ સે આયે તબ સે યે વિશેષ જિમ્મેવારી સબ વિંગ કી કોઓર્ડિનેશન કી મિલી હૈ. ઇતને સારે વિંગ્સ કે કાર્યક્રમ વહાં ચલતે હૈ, સબકા આપ કોઓર્ડિનેટર હો ઓર જો ભી વીઆઈપી આદિ આતે હૈ સબકી સેવા મેં આપ ઉપસ્થિત હો. હર પ્રોગ્રામ મેં આપ અપના પ્રવચન દે કરકે સબકો લાભ દેતે હો ઓર ભારત મેં સાયન્ટિસ્ટ વિંગ કી ઓર સે કઈ પ્રકાર કે કેમ્પેન અભિયાન, પર્યાવરણ હૈ, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ હૈ, એસે કઈ પ્રકાર કે અભિયાન હૈ ઉસકે આપ જિમ્મેદાર થે ઓર ભારત સરકાર સે આપકો કઈ સેવાઓ કે કારણ, વિશેષ પર્યાવરણ કી સેવા કે કારણ એવોર્ડ ભી મિલે હૈ, સન્માનિત ભી કિયા હૈ. ઓર આજ હમારે બીચ બાબા કે સાકાર બ્રહ્મા બાબા કે અંતિમ સમય પર, અંતિમ સમય મેં આપને જો બાબા કો દેખા, કર્માતી સ્થિતિ બાબા કી ક્યા થી, વો ભી આપકે અનુભવ મેં આપ સુનાયેંગે. ઇસીલીએ વિષય હૈ અંતમતિ સોગતિ. આપકે લીએ યહી કહુંગી કે ગગન કી શાન સિતારે હૈ, ચમન કી શાન બહારે હૈ, હમારી શાન ઇસમે હૈ જો આપ ઇસ સભા મેં પધારે હો. હમ સબ એક હાથ કી તાલી સે આપકા બહોત બહોત તહે દિલ સે સ્વાગત કરતે હૈ. સ્વાગત હૈ, સ્વાગત હૈ, સ્વાગત હૈ.
ઓમ શાંતિ. અંતમતિ સો ગતિ કા ગાયન હૈ. જૈસા બહેનજી કા આદેશ હુઆ હૈ, ઇસ વિષય કો લેતે હુએ સાકાર બ્રહ્મા બાબા કી જો અંતિમ દિન કર્માતીત અવસ્થા, સંપૂર્ણ સ્થિતિ, ફરિશ્તા રૂપ સ્થિતિ, અવ્યક્ત जो बाबा की स्टेज उसे देखने का मौका मिला अपनी आंखों से, तो उन सबको शेयर करते हुए हम सभी अव्यक्त बाप दादा के जो महावाक्य हैं और जो बाबा ने हम सबको कहा है और शुरू से लेकर कहते आए हैं, अंतमति सोगति, तो हम सबका पुरुषार्थ भी उसी के लिए ही हो रहा है, उस एक घड़ी के लिए बस, जब इस शरीर से विदा लेकर के छुट्टी लेके हम सब जाएंगे और उस समय हमारी जो स्थिति होगी उसके आधार पर ही हमारी आगे आने वाले गति होगी। सतयुग त्रेता में कैसा जन्म, कैसा हमारा स्टेटस, लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, जो नौकरी करते हैं, जिन्होंने सेवा की है, उन्हें मालूम है कि जब व्यक्ति रिटायर होता है लास्ट में, तो जो लास्ट पे होती है उसकी, अंतिम पे, उसके आधार पर ही सब कुछ चीज कैलकुलेट होती है। लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC बोला जाता है, ग्रेजुएटिटी हो चाहे पेंशन हो या कोई भी जो भी प्राप्तियां होती हैं उस अंतिम सैलरी के आधार पर। और इस कारण से पूरा का पूरा आधार, जैसे उस स्थूल दुनिया में लास्ट पे होती है, तो यहाँ पर जो लास्ट श्वास होता है हम बच्चों का अंतिम श्वास, उसके आधार पर ही पूरी गति होती है। तो इसीलिए हम सब बच्चों का बाबा हमेशा ये कहते हैं, मामा भी ये कहती थी, क्या कहती थी इस संदर्भ में, कि सदा ये समझो ये मेरी अंतिम घड़ी है, क्योंकि इस समय अगर हमारा श्वास निकल जाए उसके आधार पर ही हमारा अगला जन्म, और इसीलिए उसको हम कैसे अनेकानेक जन्म और वो भी सदा काल के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए सार्थक हो जाए, तो इसलिए हमारा ये पुरुषार्थ सदा रहे और उसका आधार ये ही है अंतिम समय का, कि बहुत काल से जैसा हमारा पुरुषार्थ रहा होगा, बहुत समय से जो रहा होगा उसके आधार पर ही काफी हद तक हमारी अंतिम श्वास वो निर्भर करती है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है बहुत काल का, जब से हम ज्ञान में आए वो, ये सबका अलग अलग है बहुत काल भी, जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से हमारा पुरुषार्थ कितना स्थिर होके चल रहा है उस पर बहुत कुछ आधार है। अवस्था जहां कहां तक हमारी स्थिर रही है, केवल यही नहीं कि जो जब से यज्ञ स्थापन हुआ 1936-37 से, तो जो लोग आए हैं उनका तो क्रेडिट है ही, साकार माता पिता की पालना ली, यज्ञ की सब कुछ देखा ही, लेकिन साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा है अगर इस समय हमारी 100 गुना प्राप्ति है, तो अगर कोई कदम ऐसा हो जाता है मर्यादा के विरुद्ध या कोई ऐसी बात, तो 100 गुना कमाई भी हो जाती है, दंड भी हो जाता है और निगेटिव भी हो जाता है, जो खाता है बैंक बैलेंस उसमें से विड्रॉ हो जाता है निगेटिव। तो इसीलिए सारा आधार हमारा इसके ऊपर है कि कितना हमारी स्थिर स्थिति रहती है, और ये ही हमने साकार बाबा को भी ये देखा और जब हमें मालूम ही है कि हमारा पेपर अब अंत समय में क्या होने वाले हैं, बाबा ने सब बता दिया है किस किस कैसे हमारे अंतिम स्वभाव संस्कार के पेपर, प्रकृति के पेपर, बहुत भटकती आत्माओं के पेपर, अनेक प्रकार के आवश्यक वस्तुओं के अभाव के पेपर, ये सब पेपर तो हमें मालूम है। इसलिए जब पेपर मालूम होता है तो उसकी तैयारी करना भी बड़ा सहज होता है। इसलिए वो तैयारी एक हमारी सदा नियमित चलती रहे। अंत तक पेपर तो आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन सबको कैसे हम प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बनाते रहे, ये एक बहुत काफी निर्भर करता है। तो इसीलिए बाबा का भी हमने देखा कि अगर कोई भी पेपर तो सबके सामने, और सब बाबा कहते हैं सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा के सामने ही कोई भी पेपर आता है तो बाबा उस बात को बताते हैं। तो इसलिए बाबा के सामने, बाबा ने अभी हम बच्चों को बताया, पेपर तो शुरू से आते रहे अंत तक, लेकिन वर्तमान समय के मुताबिक बच्चों के सम्मुख दो पेपर विशेष आएंगे। कौन से हैं दो पेपर? एक कर्म भोग का, एक बाबा ने बताया है परिवार का पेपर, हमारे ब्राह्मण परिवार का। क्योंकि जितना जितना हमारा परिवार बढ़ता जाता है उतना उतना बाबा ने कहा कि राजाई भी स्थापन हो रही है, तो बहुत ऐसी स्थितियां आएंगी कि बहुत पुराने पुराने भी उनकी भी कोई अवस्थाओं में जब देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे, तो क्या होगा, हमारे मन के अंदर भी बहुत संकल्प चलेंगे। इसीलिए बाबा ने बताया है कि परिवार का पेपर, क्योंकि एक तरफ जहाँ राजा महाराजा हैं वहाँ स्थापन हो रहे हैं, वहाँ ऑर्डिनरी प्रजा भी है और सब प्रकार के दास दासियां, पूरी राजाई यहाँ तैयार हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा परिवार का पेपर आएगा और जब उनका देखेंगे, अरे ये इतने पुराने और इनकी ऐसी अवस्था, तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे, संकल्प रूपी खजाना भी वेस्ट होगा और उसके कारण समय रूपी खजाना भी वेस्ट होगा। जो बाबा ने कहा ये दोनों खजानों को बचाते रहना है। तो जब इतना बड़ा परिवार है हा? उसमें जब देखें तो क्या स्थिति रहे, क्या बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है, क्या सॉल्यूशन दिया है परिवार में अगर किनकी ऐसी स्थितियां देखते हैं, तो बाबा ने कहा है कि एक तो ये सदा समझें कि बाबा ने कहा है कि बाबा का एक एक बच्चा बाबा का चुना हुआ है। हमने भगवान को नहीं ढूंढा, बल्कि भगवान ने हमें ढूंढा है, चुना है, और इस कारण से हम सदा ये समझें कि ये भगवान का चुना हुआ बच्चा है, भगवान ने इसे चुना है। वर्तमान समय भले अगर कोई स्थिति है ऊपर नीचे देख रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक जैसे साइड सीन है, और चूंकि भगवान ने चुना है और भगवान का लास्ट में लास्ट बच्चा भी बाबा ने कहा है मेरा, वर्तमान समय के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राजा रानी है उनसे भी महान है, तो ये सदा बुद्धि में रखें कि ये भगवान का चुना हुआ बच्चा है और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो समय पर ये जो है आत्मा के द्वारा भगवान को ऐसा पार्ट प्ले करवाना है जो ईश्वर की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। इसलिए उस के लिए बाबा ने विधि क्या बताई है कि हर आत्मा को हम तीनों कालों की दृष्टि से देखें, तीनों कालों की दृष्टि से। तो वर्तमान समय ये पार्ट है, लेकिन ये वही आत्मा है जो डबल ताजधारी थी, अंत में भी इसे वही डबल ताजधारी बनना है, और इस कारण से ये तो ड्रामा की वैरायटी है। वैरायटी होती है, कोई फिल्म होती है, नाटक होता है, जितनी वैरायटी होती है उतना नाटक अच्छा होता है। और बाबा भी कहता है ये ड्रामा नाटक मुझे बहुत अति प्रिय है, इससे बढ़िया ये ड्रामा बन नहीं सकता। ये मुझे अति अति प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है हमें प्रिय ना हो ये कैसे हो सकता है। इसीलिए एक तो ड्रामा के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएं कि ये क्यों क्या कैसे, और साथ ही साथ वैरायटी को देख के उसे एंजॉय करें। पिक्चर होती है वैरायटी, कोई हीरो हीरोइन होता है, कोई विलेन होता है, कोई कॉमेडियन होता है, हंसने नाचने गाने सब अलग अलग होते हैं, तभी फिल्म एंटरटेनमेंट होता है। तो इसीलिए इसके अंदर हरेक के जो पार्ट है उसे देख करके हम बिल्कुल सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे, साक्षी होकर हरेक के पार्ट को देखते रहे। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, साक्षी होकर के देखने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात का ज्ञान स्पष्ट रहे। देखो साक्षी दृष्टा, दृष्टा बोलते हैं ना, तो ये आंखें क्या है, ये दृष्टि है। इसके थ्रू, इसके द्वारा जो आत्मा देखती है वो क्या है, वो दृष्टा है। सामने जो कुछ भी देखते हैं वो सब है दृश्य है। और जो इस स्थिति में स्थित होकर के देखते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, उनका सृष्टि में सदा दृष्टांत बनता जाता है। इसीलिए पूरा इतिहास हमारा गायन सदा करे, दृष्टांत बना रहे हमारा, वाह इनका पार्ट, इन्होंने कितना बढ़िया पार्ट प्ले किया है। फिल्म में भी कहते हैं ना, और ऐसी प्राइज मिलता है, तो ऐसी सारी दुनिया कहे इन्होंने क्या पार्ट प्ले किया है, और बाबा भी हमें विजय माला के मणके का प्राइज दे। उसके लिए यही है कि हम दृष्टा, इस दृष्टि के द्वारा सारे दृश्य देख रहे हैं, और एक एक क्षण हमारा दृष्टांत बनता जा रहा है। तो एक ये स्थिति रहेगी तो परिवार के किसी भी व्यक्ति का कोई भी दृश्य, क्योंकि अक्सर करके वो हमारी स्थिति को ऊपर नीचे करने का, टाइम वेस्ट करने का एक साधन कई बार बन जाता है। एक तो ये स्थिति, और बाबा का हम देखते थे, साकार बाबा के साथ हमें रहने का 6-7-8 साल मौका मिला। 61 के अंत में, 62 में ज्ञान में आए, और 62 से 69 तक कई बार बाबा के साथ मिलना हुआ, रहना हुआ, दिल्ली में, कानपुर में, अलग अलग जगह जहां जहां बाबा जाते थे वहां भी मिलने का मौका मिल जाता था, साथ रहने का मौका मिल जाता था। कई ऐसी बातें हो जाती थी यज्ञ में ऊपर नीचे, लेकिन बाबा एकदम अच्छा बच्चे ये चलो। अर्जुन अभी ड्रामा में यही पार्ट है, अभी बाबा कहता था ये करो बच्चे, ये सेवा नहीं होती थी, बाबा कहता था अर्जुन अभी पार्ट नहीं है, हो जाएगा हर चीज में इतना, लेकिन साक्षी कब, दृश्य होने के बाद, ड्रामा पहले, ड्रामा से पहले नहीं, पहले पूर्ण पुरुषार्थ करे उस कार्य के लिए, और अगर अनुकूल पूरा नहीं होता है तो साक्षी होकर के देख ले। एक ये बात बाबा ने जो पेपर की बताई, और क्या बताई बाबा ने, दूसरा पेपर जो बताया, कोई बता रहे थे बहन जी, हमारे शरीर का पेपर, क्योंकि योग रोग भोग इन सब के द्वारा कर्म भोग जो भी चुक्तु होने हैं, और वो बाबा ने बता रखे हैं, अंत तक ये ही हमारा साथी है सत्युग के आदि से लेकर और अंत तक। इसलिए इसके द्वारा बहुत जो भी पेपर हमारे चुक्तु होने हैं, तो बाबा का भी यही देखते थे। तो इसीलिए बाबा ने हमेशा कहा है कि हमारी स्वस्थिति ऐसी हो जो परिस्थिति को बदलते है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाबा का भी क्या देखते थे, ये हिस्ट्री हॉल है ना नीचे, तो वहां पर बाबा क्लास कराते थे। ऐसे 3 संदली होती थी, एक पे बाबा, जब मामा थी तो मामा, बीच में बच्चे बैठ के अनुभव वगैरह सुनाते थे, और बस उनको सुन के बाबा को जो डायरेक्शन देनी होती थी बाबा देते थे। और कई बार आपने सुना है बाबा की उम्र भी थी, ठंडी का मौसम तो खांसी कई बार आती थी, तो कई बार तो खांसी आते आते ऐसी स्थिति हो जाती थी, लेकिन वंडर ये होता था कि जब ऐसा लगता था बाबा को जैसे तकलीफ हो रही है, कुछ सेकंड देखते थे, कुछ मिनट, लेकिन तुरंत ही बाबा अपनी स्वस्थिति से, अरे बच्चे देखो अभी ये पुराना पतित छिछी शरीर है, और कल बाबा जाके ऐसे मिशनु कृष्ण बनेगा, ट्रांसलाइट का कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था, ओ नई दुनिया होगी वहां पर, कितना ओ अच्छा तन होगा, मन होगा सारा, और कोई खांसी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी बच्चे, बस ऐसी बाबा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाता था कि वो खांसी वाली परिस्थिति तुरंत बदल जाती थी, और बस फिर ऐसा हो जाता था। तो ये बाबा यही अभी हम बच्चों से चाहता है कि अंत मते सो गति के लिए हमारी स्वस्थिति इतनी पावर हो कि कोई भी परिस्थिति आए, शरीर की आए, संबंधियों की आए, परिवार की आए, प्रकृति की आए, कोई भी आए, हम उसको सहज पार कर लेंगे। स्वस्थिति शक्तिशाली होगी, परिस्थिति पार हो जाएगी, एकदम विजयी बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि सदा, जैसे हमारा मन होता है ना, कहा भी जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन के ऊपर ही पूरी भारतीय संस्कृति, हमारी फिलॉसफी सारी की सारी मन के ऊपर आधारित है। इसीलिए यही कहा गीता में भी अंत में सार, मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो मन ऐसा हो जो अंत समय में, जो बाबा ने कहा है, कोई और याद ना आए, क्योंकि जहां याद आया कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अनुरूप, वही जन्म लेना पड़ेगा, वही हिसाब किताब चुकतु होने का पार्ट शुरू फिर से हो जाएगा, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है ऐसी स्थितियों अंत में कोई याद ना आए, और वो कब होगा, मन के लिए भी है, यहाँ भी कोई डॉक्टर बैठे हो मालूम होगा, ये मन चेतन मन है, लेकिन साथ साथ एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, बहुत बहुत पावरफुल होता है वो। चेतन मन सिर्फ 10% होता है, 90% शक्तिशाली हमारा अचेतन मन होता है, जिसको हम वृत्ति भी कई बार कह देते हैं। तो इसीलिए अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड, अर्थ चेतन मन में हम बस ये घुसाते चले जो हम चाहते हैं। क्या हम सभी का लक्ष्य विजयी बनना, तो बस ये हम रोज कई बार रिपीट कर, जैसे योग में कहते हैं जनरल में आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, या परम धाम, जो बाबा ने योग की बात बताई वो बिल्कुल प्रेलिमिनरी स्टेज है। बच्चा जब पढ़ता है ABCD, ये वो स्थिति है। अभी क्या आना चाहिए, हमेशा बस ये, बाबा मैं आपका विजयी रतन हूं, मैं कलप पहले वाली वही विजय माला का मणका हूं, कलप पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो, कलप कलप विजयी बनाते रहोगे, बनाओ, ये नहीं आपने बनाया था, इतने अधिकार से बोले मैं वही माला का मणका हूं, कलप पहले जो विजयी माला का मणका बना था, और अपने अचेतन मन में ये घुसाते रहे अंदर तक ना, तो सोते जगते अपने आप ही वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जब आत्मा शरीर छोड़ेगी ना, वो अचेतन मन की सारी बातें एकदम अंतिम दृश्य के रूप में घूम जाएंगे। अगर उसके अंदर कोई भी बात होगी, किसी के प्रति वैर भाव होगा, कोई ऐसी बात होगी काम क्रोध लोभ मोह से संबंधित, तो वो अंत समय सारी सीना चाहेंगी। तो उन सब को काउंटर करने के लिए, मिटाने के लिए, बस योग में मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजय माला का मणका हूं, मैं वही आत्मा हूं कलप पहले वाली बाबा आपकी, जो आपने मुझे कलप पहले भी विजयी बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो। बस अचेतन मन इसी चीज को स्वीकार करता है, जितने भी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। मैं कई बार मन में होता है भाई हम कैसे बनेंगे, दादियां हैं, दीदियां हैं, हमारी समर्पित बहनें हैं, हम परिवार वाले, घर गृहस्थी वाले कैसे बनेंगे, लेकिन नहीं, बाबा ने बहुत पहले एक माला के ऊपर मुरली चलाई थी, जो बहुत 70s वगैरह में आई भी होगी, उसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि मेरी माला में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? माला जो है ना, भगवान को न्यायकारी बोलते हैं, तो भगवान को न्यायकारी कब बोलेंगे अगर बाबा अपनी माला में विजय माला के मणके में सारे 1936-37 वाले ही ले लेगा या सारे ही समर्पित भाई बहन ले लेगा, तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा मेरी माला की यही विशेषता है, उसमें मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं, पुराने से पुराने भी हैं तो नए से नए भी हैं, जो लास्ट सो फास्ट जाने वाले हैं। मेरे वो बच्चे हैं भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं, समर्पित बच्चे हैं तो परिवार घर गृहस्थी में रहने वाले बच्चे भी मेरी माला के मणका है, कुमार हैं तो अधर कुमार भी हैं उसमें, कुमारी हैं तो अधर कुमारी भी हैं। ये ही माला की विशेषता है कि उसमें सब प्रकार के मेरे बच्चे हैं, भले मेजोरिटी समर्पित और दादियां और इन सब के होंगे, लेकिन चाहे एक दाना भी हो दो दाना भी हो अधर कुमारों का, अधर कुमारियों का, परिवार घर गृहस्थी वालों का वो सीट रिजर्व है, बुक है। जैसे गवर्नमेंट कोटा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नौकरी में बुकिंग रहती है ना, वो उन्हीं से ही भरी जाती है। तो इसीलिए जो प्रवृत्ति वाला है, जो अधर कुमारी का है, जो कुमारों का है, जो वो उन्हीं से ही भरना जाएगा, भले दूसरे चाहे अवेलेबल भी हों। ये बाबा के माला की सबसे बड़ी विशेषता। तो इसीलिए इस बात को बुद्धि में रख के वो समझे कि वो जो सीट है ना वो मेरी है और मैं ही जाके उस सीट को लेने वाला। सो गति को सफल करने के लिए एक ये आवश्यक है कि हमने समेटा हुआ हो। हमें याद है बाबा से जब हम लोग पहले 62-63 में मिला करते थे तो बाबा पूरी बातें सुना करते थे, डिटेल में काफी टाइम देते थे, समाधान देते, ऐसा करो बच्चे ऐसा करो, ये काफी समय एक एक को दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, जब 66-67 में मिलते थे तो बाबा बस 2-4 लाइन सुन के ही तुरंत ही स्टॉप कर देते थे, अच्छा बच्चे ऐसा कर लो ऐसा। हम लोग कहते थे बाबा अभी तो हमने पूरी बात कही भी नहीं, बाबा कहते नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था बाबा सब तरफ से समेट करके और अंत में तो ऐसा हमने दृश्य देखा। 17-18 जनवरी को हम यहीं थे। मैं वैसे जस्ट बैकग्राउंड बता दूं कि लौकिक में इंजीनियरिंग करने के बाद पहली हमारी पोस्टिंग आसाम में ही हुई थी, उधर शिव सागर में ONGC में थे। तो बाबा हमारी दिल उस समय तो नहीं थी कि भाई वहां जाए, कोई भी सेंटर नहीं था, क्लास नहीं थी, पास में पास सेंटर कलकत्ता था। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे वहां जाओ, बाबा के बहुत भोले भाले बच्चे आसाम के, वो बाबा क्या इंतजार कर रहे हैं, बस तुम्हें तो जाके संदेश देना है और बच्चे अपने आप निकल आएंगे। और हमने देखा कि वहां जाके उस समय तो ना सेवा के इतने साधन थे ना अनुभव था, क्योंकि जस्ट स्टूडेंट पढ़ाई इंजीनियरिंग करके पहली पोस्टिंग ही वहां हुई, वहां गए। लेकिन बाबा का काम होता है ना, जब बाबा को हम अपना तन मन ये अर्पण कर देते हैं, फिर बाबा ही क्लास कराता है, सब कराता है। और जब बाबा ने कई बार मुरलियों में बोला है ना, जब बाबा देखता है कि समझने वाले बच्चे तो बहुत अच्छे आए लेकिन समझाने वाला में उतना अनुभव नहीं है, तो बाबा क्या करता है, है? बाबा भी प्रवेश करके कई बार मुरली चला देता है, समझाता है। तो कितनी बार हम ये अनुभव करते थे, क्यों? क्योंकि बस वहां क्लास करते थे और सुनने वाले ध्यान में चले जाते थे बहुत, और 2-3 महीने के अंदर ही वहां पर 100 से ज्यादा की क्लास होगी, क्योंकि जिन्हें साक्षात्कार होगा, ध्यान होगा, भक्ति मार्ग में तो ये बहुत बड़ी चीज समझी जाती है। वो करण करावनहार तो बाबा है, तो वो बस करा के और सब जैसे कि इतने और चारों तरफ सिटी में आसपास सब जगह ये हो गया एकदम, अरे यहाँ तो भगवान के दीदार होता है, साक्षात्कार होता है आदि आदि। तो भाव ये है कहने का कि हम में अगर सामर्थ्य न भी हो लेकिन अगर हम भगवान को अर्पण करके कार्य करते हैं तो बाबा उसके द्वारा कार्य अपना करा लेता है। तो बाबा को ये देखा, और जब हम जा रहे थे हमने कहा बाबा इतनी दूर जा रहे हैं वहां, तो बाबा ने बस एक लाइन बोली थी, बच्चे बाबा समय पर बुला लेगा। तो देखो वहां हम 67 में गए थे और 68 में भी रहे और 69 में भी, तो बस जनवरी का ही महीना था और वहां पर देहरादून से आए थे हम, तो वहां बहन जी ने बोला कि यहाँ म्यूजियम बनने वाला है, बनाएंगे, आप आ जाओ छुट्टी लेके, तो कुछ दिन तो अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, हमने वहां एक बाबा को पूछा तो बाबा ने संदेश दिया कि बच्चे हाँ भले वहां जाओ लेकिन पहले आबू आओ और तुरंत प्लेन से आओ। तो जैसे ये संदेश मिला जनवरी में हम, और बस पहुंच गए और 17 तारीख की सुबह यहाँ पर आ गए। तो देखो सबसे दूर से दूर आसाम में हम वहां पर आसाम में वहां पर थे पोस्टेड, लेकिन विदेश में भी कोई सेंटर नहीं था, लेकिन अंतिम समय बाबा ने अपने पास बुला लिया और यहाँ पर बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त स्थिति देखने का मौका मिला। और उसमें हमने क्या देखा कि हमने सोचा कि बस पार्टियां तो थी नहीं, चलो बाबा से ये पूछेंगे, ये पुरुषार्थ की बात, ये सेवा की बात, ये धारणा की बात, अलग अलग बस। लेकिन बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे ही जरा सा दृष्टि दी और अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस बाबा मन की बात पढ़ लेता था। यह है अंतिम स्थिति का प्रतीक। जब हमारी भी अंतिम स्थिति होगी ना, तो हम किसी के भी मन की बात को परख करके उसका समाधान कर देंगे, तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी, वाह वाह होगी, तभी तो सब कहेंगे अरे यहाँ तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। और ये बाबा का हमने एक बार दो बार नहीं, 2 दिन में 17 की सुबह आ गए थे, 17 और 18 जनवरी में 6-7 बार देखा। बस कोई अलग, कभी ज्ञान की बात, कभी धारणा की, कभी सेवा की, कोई भी बात लेके जाते थे, बस अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण। अगर हमने अपना मन जीता हुआ होगा, और बाबा की तो वही कर्मातीत अवस्था थी, तो अपना मन जीता होगा, अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त की हुई होगी, तो दूसरों के संकल्पों को भी हम तुरंत पढ़ लेंगे और उनका समाधान कर देंगे, तभी तो वो कहेंगे अरे ये तो भगवान है, ये तो मेरे मन की सारी बात जानते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में बाबा का देखा, क्यों? क्योंकि बाबा ने सब समेट लिया था। अंत में बुद्धि जाती वहां है जहां पर कुछ ना कुछ लगाव झुकाव हो, लेकिन अगर समेटा हुआ होगा वहां लगाव झुकाव नहीं होगा तो क्या होगा, फिर तो बस हम और बाबा और कोई है ही नहीं। तो इस कारण से जब ऐसी स्थिति होगी, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, तो क्या होगा, दूसरे की इच्छा को हम तुरंत पढ़ लेंगे। तो एक ये है अंत मते सो गति पहुंचने का पुरुषार्थ, कि अपने मन को संकल्पों को जीता हुआ हो और दूसरों के संकल्पों को पढ़ के तुरंत उनका समाधान करने की शक्ति हो। देखो बाबा ने ना कहा था अंत में बाबा बुला लेगा, अंत में बाबा ने बस अंत समय में बुला लिया। सबसे दूर से दूर भी थे, और ये 18 जनवरी को की ही बात है, बाबा के वहां सम्मुख बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे। यही छोटा हिस्ट्री हॉल है ना, हम भी बैठे थे इधर, भाई लोग बैठते थे इधर, बहने आगे, दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी बैठे हुए थे, और हम लोग भी कुछ थोड़े से लोग थे इधर ही सामने दूसरे तीसरे लाइन में। तो सुनते सुनते ही, मुरली सुनते, हमारे मन में विचार आया, आप सबके मन में भी ये होगा हमेशा, अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं ना तो बाबा वैसे मुरली भी सुनाते हैं, याद प्यार भी देते हैं, सबको टोली भी मिल जाती है, फिर भी सूक्ष्म ये इच्छा रहता है अरे स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, या बाबा की दृष्टि सामने मिल जाए, आदि आदि ये होता है ना। तो वहां सुनते मुरली सुनते 18 जनवरी की रात्रि क्लास चल रही थी, मन में आया बाबा कुछ बोले मेरे लिए, बस मन में संकल्प आया। तो भक्ति में भी कहते हैं ना, भक्त के मन में संकल्प होता है तो भगवान इष्ट देव उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो ये कर्मातीत अवस्था का लक्षण है, जैसे ही संकल्प आया तुरंत बाबा को संकल्प कैच हुआ, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त की हुई आत्मा थी, तो तुरंत ही बस बाबा ने मुरली में बस नाम लेकर के बहुत महावाक्य उच्चार दिए। क्योंकि वहां पर भी आसाम में थे तो बाबा का रेगुलर पत्र आता था, अभी भी हमारे पास लगभग 8-10 पत्र बाबा के मौजूद हैं, आसाम निवासी मोहन प्रति, कहीं भी शिव सागर निवासी, ऐसे करके। और बाबा इतना प्रेरणा देते थे पत्रों के द्वारा, इतना दूर बैठे हुए, तब ना तो कोई इंटरनेट ना मोबाइल और ये सब तो कुछ होते ही नहीं थे, 68-69 की बात है। तो सबसे पहले पहले जब गए बाबा ने, वहां पर आसाम में बीज डालने का, बाबा ने बीज डाला वहां पर। तो भाव ये है कहने का, हम सबका जो लक्ष्य है अंत में कि हम कर्मातीत बन के विजयी माला का मणका बन जाए, तो उसके लिए एक ये हो समेटा हुआ हो, दूसरा ऐसा स्थिति हो कि बस इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो, तीसरा जब परीक्षाएं आती हैं, पेपर आते हैं, क्योंकि सभी पुरुषार्थी हैं, परिवार में रहते हैं, तो उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने भी एक सिद्धांत दिया है, जियो और जीने दो। ये सिंपल सिद्धांत है। होता क्या है संसार में, हम हरेक को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं, बड़ा होगा छोटा को, सास होगी बहू को, बाप बेटे को, भाई भाई को, बड़ा टीचर छोटे टीचर को, आदि आदि सब अपनी इच्छा से जब चलाना, और वो इच्छा के अनुरूप जब नहीं चलते हैं तो फिर कहीं पर कुछ टकराव होता है, संकल्प विकल्प आते हैं आदि आदि। तो बाबा ने कहा है कि ये अगर हम चाहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल, तो हाँ जो हमारे माथत है, हमारे मतलब अंडर में है, उनको गाइडेंस देना, वो सब करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर संस्कारों अनुसार या वो नहीं चलते हैं कुछ, तो उसमें अपना जियो और जीने दो का सिद्धांत कि अच्छा ड्रामा, जैसे बाबा यज्ञ के मालिक, बाबा बताते थे, कई बार बच्चे नहीं कर पाते थे तो कोई बाबा का ऐसा नहीं कि डांटना, करना, समय वेस्ट करना, क्रोध, दूसरे के संकल्प चलाना, चलने देना नहीं, बस उस पर अपना काम करा, फिर न्यारे और प्यारे हो गए। तो अंत मते सुगति के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी स्थिति पर ध्यान दें, और वो तब होगा धीरे धीरे जब समेटा हुआ होगा। और साथ में क्या होगा, बाबा का देखा ये तुरंत, जैसे बाबा के मन में, हमारे मन में जो संकल्प आया बाबा ने तुरंत कैच किया, उसका वर्णन कर दिया, ऐसे ही अंत समय में दुनिया के सामने तो हम ही होंगे, जैसे हमारे सामने बाबा थे, अभी वर्तमान में दादियां हैं, बड़े हमारे वरिष्ठ भाई बहने हैं, ऐसे ही दुनिया के सामने आप एक एक जो है ब्रह्मा का स्वरूप हो, हमारे अंदर वो आके अपने इष्ट देव की प्रतिमा देखेंगे। हम एक ही होंगे, चार लोग आए, चारों के इष्ट देव अलग अलग है, लेकिन चारों को हम एक से अपने अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होगा और जो इच्छा लेकर के आएंगे हम उनकी इच्छाओं को तभी पूर्ण कर सकेंगे। बाबा जो साक्षात्कार की चाबी बाबा के हाथ में है, हमारे इस तन मन के द्वारा बाबा उनको उनकी इच्छा के अनुरूप साक्षात्कार कराएगा, तभी तो उनकी भावना बैठेगी और तभी तो उस बात को वो स्वीकार करेंगे। कोई हनुमान का भक्त है और उसे कृष्ण का साक्षात्कार हो तो भले वो साक्षात्कार हुआ लेकिन उसकी भावना नहीं बैठेगी। आप सबने भी इतिहास में पढ़ा होगा ना बाबा की जीवन कहानी में, शुरू में बाबा को से सबको कृष्ण का, नारायण का और स्वर्ग का बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार सब रास करते थे, बस ध्यान में चले जाते थे। लेकिन ज्ञान में सब तो नहीं आते हैं, तो एक परिवार सरदार का आता था, तो परिवार आता था लेकिन वो सरदार जी नहीं आते थे, तो वो कुछ एंटी थे। उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं बाबा को मार दूंगा, खून कर दूंगा, छुरा लेकर गए। जब एकांत देखा बाबा और वो अकेले थे तो उन्होंने छुरा निकाल के जब वार करना चाहा तो क्या हुआ, उन्हें गुरु नानक देव का साक्षात। अब बाबा कोई गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन उनको चूंकि उसकी भावना गुरु नानक देव में थी तो उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ बाबा से, और बस उससे तो वायरा हो गया, अरे गुरुजी मैं क्या करने वाला था, मैं कितना पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, आपको मार रहा था मैं। आंखों से आंसू बहने लगे और छुरा बाबा के पैर के पास रख दिया और बस मैं, हे भगवान मुझे माफ करो, हे गुरुजी, अपना पंजाबी में ना सब वो करके क्षमा मांग करके वो चला गया। तो हम वही होंगे एक ही, लेकिन हमारे द्वारा भक्त जो भी हमारी प्रजा होगी सत्ययुग त्रेता के बाद द्वापर युग से, वो हमारे भक्त आत्मा वो जिस इस इष्ट देव की इच्छा लेकर आए होंगे उस इष्ट देव का साक्षात्कार हमारे द्वारा होगा। बस हमें इतना करना है, मुझे अपना तन और मन पवित्र रखना है। मन के अंदर भी कोई नेगेटिविटी, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, बदले की भावना ये सब ना आए, वो तो हम सुनते ही हैं। और तन के द्वारा भी कोई भी ऐसा पवित्र कर्म ना हो जो बाबा हमारे, क्योंकि साक्षात्कार होगा तो इस तन के द्वारा ही ना, आत्मा पवित्र साथ साथ शरीर भी। तो ये एक हमारे ऊपर, फिर देखो बाबा क्या क्या खेल कराता है। बाबा ने कहा अंत में ऐसे खेल होंगे जो आदि में भी नहीं हुए। आदि में हमने सुना है बहुत साक्षात्कार होते थे सब, अंत में उससे भी ज्यादा साक्षात्कार लेकिन हमारे द्वारा होंगे, और हमारे द्वारा तब होंगे जब हमारा ये तन मन दोनों शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इस कारण से उसके लिए तैयारी बस हम अभी से करते चले कि हमारे द्वारा कैसे बाबा को साक्षात्कार कराना है, और उससे हजारों लाखों की प्रजा एकदम तैयार हो जाएगी, वो बाबा कराएगा। एक बाबा ये चाहता है कि अंत में इससे पहले हम शरीर छोड़े तो हमारी ऐसी मानसिक स्थिति हो, और साथ में क्या हो, ये सब बाबा का ये देखते चलते थे। तो जब शरीर का पेपर आएगा, बहुत व्याधि होगी, कष्ट होगा, दुख होगा, बाबा क्या करते थे, कई बार बाबा को ना जब बहुत व्याधि है कुछ है तो एक अभ्यास बाबा को बहुत पक्का था शरीर में आने का और शरीर से न्यारा होने का। पार्टी को टाइम दिया होता था बाबा या तो झोपड़ी में मिलते थे या बाबा अपने कमरे में या हिस्ट्री हॉल, दो तीन लोग होते थे तो अपने कमरे में भी बाबा, तब तो बाबा का कमरा बड़ा छोटा था, जितने तक पलंग पड़ा हुआ बस उतना ही बड़ा कमरा था, मुश्किल से 8x10 का कमरा था या इतना। एक तरफ नीचे गद्दी पड़ी हुई थी जहां बाबा बैठते थे, इधर बाबा का पलंग था और बीच में वो बिछा रहता था जहां पर पार्टी के लोग दो चार जो होते थे आके बैठते थे, बाबा से मिलते थे। तो एक ये वहां पर, या 8-10 लोग होते थे तो झोपड़ी में, और ज्यादा बड़ी पार्टी 20-25 की होती थी तो हिस्ट्री हॉल में मिल लेते थे। तो इस रीति से बाबा मिलते थे। तो संदेशी, जब वो संदेशी नहीं ब्राह्मणी, जिसने टाइम लिया 10 बजे मानो टाइम दिया है बंबई पार्टी को, 10:30 कलकत्ता, 11 दिल्ली के पार्टी को आदि, तो ब्राह्मणी आती थी पार्टी बाहर रहती थी और देखने की बाबा से पूछे, बाबा पार्टी को ले आए? बस देखती थी बाबा बैठा है, आंख खुली हुई है, लेकिन बाबा जैसे तन यहाँ है और आत्मा जैसे कहीं और है, बस किसी ध्यान में मग्न। ब्राह्मणी आती थी, बाबा बाबा, तो बाबा थोड़ा कभी कभी बाबा को जर्क जैसा, कोई ध्यान नहीं, साक्षात्कार नहीं, आंख बंद नहीं, लेकिन जैसे बाबा देह से न्यारा, पांच स्थितियों का वर्णन करते थे वहां या जहां भी बाबा को सकाश देने जाना होता था। और फिर अच्छा बच्ची आ गए, आओ पार्टी, बाबा पार्टी लाई हूँ, हाँ हाँ ले आओ बच्चों को, बस बैठते थे, बाबा मिलता था। और जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे ही हम दूसरों को अनुभव कराते हैं। अभी भी मधुबन में प्रवेश करते हैं और सामने बाबा का चित्र है ना ये वाला, तो बस पहले भी जब बाबा से मिलते थे ना तो बस बाबा कहते, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा हाथ फैला देता था और बस हम चुंबक की तरह खींच के ना जैसे बाबा की बाह में चले जाते वन बाई वन। और उसके बाद फिर बस जैसे सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती थी अशरीरी स्थिति का अनुभव। उसके बाद बाबा ऐसे थोड़ा थपथपा, आओ बच्चे, आओ आओ आओ, ऐसे करता था, तो जैसे बाबा हम भी शरीर में आने का पुरुषार्थ करते थे। फिर शरीर में आए, बाबा हालचाल पूछता था, टोली खिलाता था, कहाँ क्या सब करके, फिर एक जाता था, दूसरा आता था। और हरेक को ये अनुभव पहली बार भी मिल रहे हैं, ज्ञान में भी चार छह मास, आठ मास, साल बहुत कम होता था, जानते भी नहीं थे, लेकिन बाबा की पावर इतनी ज्यादा होती थी। और बाबा ने, हम सब ने सुना, ये अभ्यास पक्का किया हुआ था, लिख लिख करके कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आदि आदि। तो अगर हमारा भी ये अभ्यास पक्का होगा, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो जिसको भी दृष्टि देंगे ना वो अशरीरी हो जाएगा। अंत में यही पार्ट चलने हैं, कोई भाषण नहीं, कोई वो सब नहीं, जो हमारी स्थिति होगी बिल्कुल वही स्थिति रिफ्लेक्ट हमारे उनमें होगी जो हमारी होवनहार प्रजा है, जो हमारे निकट के साथी हैं, जो सतयुग से आदि से लेकर यहाँ पर निकटता वही बनेगी। इस कारण से बाबा ने कहा है, बस बाबा के पास आते थे, ऐसे बाबा अनुभव कराता था, फिर सब मिलके चले जाते थे। तो बाबा अब यही चाहता है हमारी स्थिति भी ऐसी हो, और वो ही अंत मते सो गते, क्योंकि अंत में क्या होगा। भारत में विशेष करके बाबा ने बताया कि पेपर तो सब, तो जैसे बाबा को आने का अभ्यास होता था और दूसरी पार्टी में टाइम होता था, वो पार्टी चली गई, फिर बाबा अशरीरी हो जाता था, फिर जैसे देह से न्यारा हो जाता था बाबा। यही अभ्यास अब हमें भी चाहिए, जब चाहे हम देह में आए पार्ट प्ले करें, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए अलग। और क्या बाबा का ये, जब ऐसी स्थिति, मन के संकल्प जानने की स्थिति आदि, ये जो बताया अंतिम दिन में हमने ये देखा, बाबा ने मुरली चलाई और उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। 18 तारीख की आप मुरली सुनो, अभी भी यहाँ सीडी और टेप मिलती है, ओम शांति भवन में नीचे जो ऑडियो विजुअल है, कहेंगे 18 तारीख की अंतिम मुरली, साकार मुरली बाबा की देखो, बड़ी पावरफुल मुरली है, बहुत स्पष्ट आवाज है, एक बार भी खांसी नहीं। तो उसमें एक बार भी वो नहीं आई, तो वो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था को हम प्राप्त करेंगे, तो सब शरीर के कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल जो है ना, वो विजय प्राप्त कर लेगा, कोई भी शरीर की व्याधि जो है वो हमें कष्ट नहीं, परेशान नहीं करेगी। अब बस आत्मा ऐसे मक्खन से बाल की तरह निकल करके जैसे बाबा गया, बस बाबा ने ये मुरली चलाई और मुरली चला के बाबा फिर बस खड़े हुए हिस्ट्री हॉल में, एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, फिर बाबा घूमे गए, फिर खड़े हुए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, क्योंकि बाबा को हो आज तो ये मेरा अंतिम साकार मिलन है। साकार ब्रह्मा के द्वारा बाबा को तो मालूम था, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु का ना, तो बाबा को मालूम, और वो तभी पता चला जैसे ही बाबा दरवाजे तक गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी भी नहीं बोले, बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वो सब करते थे, लेकिन पहली बार स्पष्ट टेप में भरा हुआ है बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। तो यानी कि हमें भी, जब हम भी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, हमें मालूम आभास हो जाएगा बाबा अब हम ये शरीर छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को हुआ। बस उसी के लिए अभी हमें सारी की सारी ये तैयारियां करनी है। जैसे सारा इतना यज्ञ का कारोबार बाबा के पास, फिर भी बाबा उसके लिए तैयार, और उसके बाद बाबा विदा लेके कमरे में गए, बस दादी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली, विदा दी। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा, क्या आश्चर्य कि बाबा ने शरीर छोड़ा बस 18 तारीख की रात को 10 बजे को छोड़ा होगा, 10:30, 10:30, लेकिन सारी रात वो शरीर रखा रहा, 19 तारीख का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन वो शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ, गोरा रंग, जैसे कोई भी काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, हम तो यहीं पर ही थे, एक भी इंजेक्शन नहीं, कोई भी केमिकल लोशन कोई नहीं, और कोई शरीर में नहीं, तो जब आत्मा चली जाती है तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। हम लोगों ने जब स्नान कराया 21 तारीख को, जहां शांति स्तंभ है वहां पर बाबा को अग्नि संस्कार, बिल्कुल जैसे बहुत फ्लेक्सिबल शरीर, एकदम चमकता हुआ, कोई वो इस बात का प्रतीक है, प्रकृति जीत का प्रतीक, 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने इतना विजय प्राप्त कर ली थी कि इन 5 तत्वों, जो संसार का प्रकृति का नियम, बिल्कुल प्रकृति ने साथ दिया, एकदम जैसे फ्लेक्सिबल शरीर चमक लगता था, हमेशा की तरह बाबा सोए हैं, अभी बाबा उठेंगे, कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, वैसे ही चमकता गोरा शरीर, वैसा ही, कोई दुर्गंध नहीं। बाबा यही चाहता है हम बच्चे भी प्रकृति को अपने अनुरूप बनाए, प्रकृति को इतना हम योगदान करें, और आसाम वालों को तो प्रकृति को अनुरूप बनाने की ज्यादा आवश्यकता है, वहां प्रकृति की हलचल दूसरी जगहों की भेंट में ज्यादा हो जाती है। तो ये प्रकृति के एक एक तत्व के साथ हम वार्तालाप करना सीखें, ये प्रकृति के तत्व है, उनको पहले भी हमने शायद बताया था, प्रकृति के तत्वों को अगर हमने जितना अपना मित्र बनाया हुआ होगा ना, तो ये प्रकृति कभी भी हमारी मृत्यु का या दुख का कारण नहीं बन सकती। जल का जैसे बहुत प्रकोप होता है गुवाहाटी में और उधर वहां पर ना फ्लड आते हैं और ये सब होता है, बहुतों की मृत्यु का भी कारण बन जाते हैं, लेकिन कैसे हम प्रकृति के इसको मित्र बनाए, क्योंकि मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। तो अपना संस्कार और जल का संस्कार को हम मैच करें, जल में जो संस्कार है वो हम धारण कर लें। कौन सा एक जल का संस्कार बहुत बड़ा है, बहने का, शीतलता का, ये सब तो है, लेकिन एडजस्टमेंट का, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का। भाई बहनों में, आत्माओं में सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही होती है, हर एक के साथ वो एडजस्ट होके नहीं चल सकते। किन्हीं के साथ एडजस्ट होना आसान होता है जिनसे संस्कार मिलते हैं, किन्हीं के साथ मुश्किल होता है, संस्कार नहीं मिलते। लेकिन जल में यही ब्यूटी है, जैसा बता रहे हैं बहन जी, कटोरी में लो, गिलास में, थाली में, चम्मच में, हर एक में वो एडजस्ट होके उसके अनुरूप अपने को सेट कर ले। इस तरीके से हमारे भी इतने लाइट संस्कार हों जो बाबा में देखते थे, बाबा बच्चे के साथ बच्चा, जवान के साथ जवान, बूढ़े के साथ बूढ़ा, माताओं के साथ माताओं की तरह, ऐसा हरेक को ये लगता था ये मेरा बाबा, जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, बाबा सबसे ज्यादा निकट मेरे है। हरेक को ये अनुभव होना चाहिए, हम बच्चों से भी, कोई भी आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, कि ये जितना मुझसे स्नेह करते हैं उतना किसी से नहीं, बहुत बहुत उस आत्मा को हमारे से निकटता का आभास होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हमारा संस्कार ना फ्लेक्सिबल होगा, कड़ा नहीं होगा। उसकी कोई पुरानी बातों को हम बुद्धि में नहीं लाएंगे। किसी की भी कोई बात होती है, उसका पुरानी बात याद आ जाती है, हमारे व्यवहार में, हमारे नैन में, चैन में वो झलकने लगता है, वैसा ही ऑरा हो जाता है हमारा, वैसी वाइब्रेशन होते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को अपनेपन का आभास नहीं होता, पुरानी घटना ही वो हावी हो जाती है। तो एक ये बात हर एक से लेकर जिस तत्व को हम चाहते हैं, वैसे बहुत सारे गुण हैं इसमें एक एक में, लेकिन अभी हम एक गुण ही सिर्फ, तो जल का सबसे बड़ा कौन सा गुण? फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक तो हमारे संस्कार इतने लाइट हो, कोई कड़ा संस्कार ना हो, हर एक के साथ हम मिलके चल सके, तभी तो हम दूसरी आत्माओं को भी सकाश दे सकेंगे, और इसी तरह उधर की तरफ अर्थ को एकाने के भी ज्यादा चांस है, क्योंकि अनस्टेबल बेल्ट है वो थोड़ी सी, वैसे तो पूरे भारत में, लेकिन पूरे बाबा ने जैसा बताया पांच तत्वों में ना, ये दो तत्व, एक तो भूमि पृथ्वी और एक जल। देखो उत्तराखंड में भी पिछले साल हुआ, उस समय तीन तत्वों का इकट्ठा आक्रमण हुआ, तो कितने लोग विद इन मिनट के अंदर ही वो पानी एकदम 10-12 फुट हो गया, सबको बहा के ले गया। तो एक तो था क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड है बादल होते हैं, वो बर्स्ट होता है, तो ये आकाश में क्लाउड बनते हैं, आकाश तत्व, उसने थोड़ा अपना कहर दिखाया, और बर्स्ट हुआ पानी, तो पानी तत्व, और साथ में लैंडस्लाइड भी हो गया। तो अभी तो ये थोड़ा थोड़ा होता है, अंत में तो बाबा ने कहा पांचों तत्व इकट्ठा आक्रमण करेंगे तो क्या होगा। हमें उसके लिए ये तैयार रहना चाहिए कि बस कोई भी तत्व हमारा प्राण उससे न निकले, मानो अभी अर्थ को एक आए, ये बिल्डिंग गिरे, ये बीम गिरी, बिल्डिंग गिरी, हड्डी टूटी, ब्लड निकला, ये हुआ तो हाहाकार होगा, तो उस समय में कहां बाबा की याद, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा, तो अंत मते सो गति वैसी हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कोई भी जब ये घटना होने वाली होगी ना, अगर मेरे साथ बच्चों का बुद्धि होगा, वॉइसलेस कम्युनिकेशन होगा, तो आपके पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बहुत सारी घटनाएं, यहां तो 50 लातूर का था, चाहे गुजरात का अर्थक्वेक का, 50 घटना हमें ही 15-20 घटनाएं याद हैं, जो समय प्रति समय, लेकिन अभी समय के अभाव में नहीं बताते, चाहे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, लेकिन आवश्यकता ये हमारी वॉइसलेस कम्युनिकेशन, ये वायरलेस मोबाइल ये सब कोई काम नहीं आएंगे, एकदम सब वैज्ञानिक कारण ऐसे रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म हो जाएगी, जहां नॉर्थ पोल है साउथ पोल हो जाएगा, साउथ नॉर्थ पोल अर्थ का, उसमें सारा ये हम लोगों को एमटेक में वहां पढ़ाया गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसा जब होता है तो कोई भी कम्युनिकेशन का साधन काम नहीं करेगा, ये ही कम्युनिकेशन का साधन मेंटल कम्युनिकेशन का करेगा। इसीलिए पृथ्वी के लिए क्या करें कि अर्थक्वेक आए, बिल्डिंगें गिरे, लेकिन हमारा बाल बांका भी ना हो, हमारे प्राण बिल्डिंगों के गिरने से अर्थक्वेक की वजह से ना निकले, तो क्या करना पड़ेगा। पृथ्वी में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? दातापन का। पृथ्वी हर चीज देती है, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही पानी मिलता है, तेल मिलता है, अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, सब चीज पृथ्वी दाता है। ऐसे ही अगर ये गुण हमने धारण किया होगा, जैसे दादियों में अभी भी देखते हैं, बाबा में देखते थे, जो आए बिना लिए हुए ना जाए, कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, लेकिन प्रेम, आदर, सत्कार, स्नेह, सद्भावना, जिसमें कोई एक पैसा भी खर्चा नहीं होता, तो ऐसा चीज हो वो सामने आए और बस भरपूरता का अनुभव करके जाएगा, तो क्या होगा, पृथ्वी से हमने अपना गुण मैच कर लिया, तो पृथ्वी कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि उसे मित्र बना लिया। तो जितना भी अर्थक्वेक, ये तो अभी भी कलयुग में भी सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में वहां अर्थक्वेक हुआ था बहुत बड़ा, तो ये चारों तरफ एकदम विनाश विनाश देखा होगा आपने कुछ साल पहले जब था, इतने सारे बड़े बड़े हाईवेज के और ओवरब्रिज सब गिर गए। लेकिन एक ऐसा था रिट्रीट हाउस एक प्रोफेसर का, जहां पर उसके मकान का बाल बांका भी नहीं हुआ, कांच का टुकड़ा भी नहीं हुआ, टूटा। तो इसके बाद प्रेस वाले, अखबार वाले, मीडिया वाले गए, अरे भाई आपने किस मटेरियल का बनाया है, आपके चारों तरफ तो सब कुछ हो गया और आपका ये कुछ नहीं हुआ। तो उसने बताया भाई मटेरियल तो मेरा भी वही है जो सबने यूज किया, लेकिन मैं रोज धरती माता के साथ वार्तालाप करता हूँ। ये धरती माता आप मेरी माँ हो, हम आपके बच्चे हैं, बेटे हैं। क्या कोई माँ अपने बेटे का अकल्याण सोच सकती है, उसका नुकसान सोच सकती है, उसकी मृत्यु के बारे में? आपको सदा ये करना है। तो हम प्रकृति के पांचों तत्वों से वार्तालाप करना सीखे, और जितना जितना ये होगा आप देखेंगे तत्व हमारे मित्र बनते जाएंगे और विकट परिस्थिति में से भी हमें पार कर लेंगे। तो बहुत गुण है, लेकिन एक गुण ये बताया दातापन का, धरती का। ऐसे वायु का क्या गुण होता है, क्योंकि जब ये तूफान आता है, हम बांग्लादेश में थे उस समय और वहां देखा तो बहुत तेज हवा भी चलती है, साइक्लोन जैसा आता है। और फिर मतलब वो तो हवा का सबसे बड़ा गुण है, हवा हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, हवा हल्की हर चीज को ऊपर उठाती है। ऐसे वायु की तरह हम सदा हल्के रहने से, कभी भारी हो जाते हैं ना, कोई बात हो गई, मन मुटाव हो गया, संबंधों में कटुता आ गई, कोई लॉस हो गया, कई चीज, तो मन बहुत भारी हो जाता है। बाबा कहते हैं नहीं, हर परिस्थिति में हल्के रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, जो है ना। तो जितना हम हल्के रहना सीखेंगे वायु की तरह, तो चाहे जितना साइक्लोन आएगा, जितनी हवा चलेगी 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से भी, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि वायु के हल्केपन को हमने भी अपनाया, अपने को उसको अनुरूप बनाया। एक एक तत्व के 8-8, 10-10 गुण है, मैं तो एक एक जस्ट हिंट के लिए अंत में बता रहा हूं। ऐसे ही आकाश का बड़ा गुण क्या है, विशालता। और सबसे बड़ी बात है आकाश का कम्युनिकेशन। आज हम मोबाइल से, टीवी, रेडियो, कोई भी चीज होते हैं, कम्युनिकेशन देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में ऐसे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं वैज्ञानिकों ने, कि जिससे वेव्स जाती हैं, रिफ्लेक्ट होके आती है और हम देख बोल सुन सकते हैं। ऐसे ही आकाश की तरह हमारी विशालता, इतने हरेक के साथ हमारा कम्युनिकेशन। ये नहीं कि इनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं तो इनके साथ मैं बहुत बात करने में हमारा बहुत टाइम भी निकल जाए, पता न चले, और जिससे अच्छे नहीं है वो सामने भी आ रहा है तो भी हम नजर बचा के निकल जाए, उनसे बात न करें, क्योंकि संबंधों में अगर मधुरता नहीं है तो उनके साथ बात करने की दिल भी नहीं होती है। तो बाबा ये चाहता है एक भी ऐसी आत्मा न हो जिससे कि आपके संबंधों में कटुता का, आकाश जैसी विशालता अपने दिल में चाहिए, उसकी कमी कमजोरी जानते हुए भी उसे हम अपने दिल में स्थान न दें। ये आत्मा है, चलो इसके ये भी पुरुषार्थी है, कमी कमजोरी निकाल लेगी, लेकिन जैसी जिसकी कमी कमजोरी को दिल में स्थान दिया, बस वो सामने आते ही उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने घूम जाती है और हमारा व्यवहार भी उसके साथ वैसा हो जाता है। तो इसलिए आकाश की तरह विशालता, और इसके लिए क्षमा का गुण बहुत जरूरी है। हरेक को देखते चले, हर मनुष्य पैदा होता है तो हरेक में दो शक्तियां होती हैं विशेष। पहली बताया कौन सी दो शक्तियां, हर मनुष्य में एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। जब से पैदा होता है ये दो शक्तियां हरेक में होती हैं, लेकिन ट्रेजेडी क्या है कि जो बात वो याद रखना चाहता है वो तो जाता है भूल, और जो भूल जानी चाहिए बात वो वर्षों तक याद रहती है। ये जीवन की विडंबना है। तो इसीलिए हर राइट चीज को राइट जगह यूज करना आए, और ये तब होगा, भूलने की शक्ति तब होगी जब हम में क्षमा करने की शक्ति होगी। महान आत्माओं में क्षमा का गुण सबसे विशेष होता है। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर देगा। तो आज अपने में देखना, मैं कायर हूं या महावीर हूं। और अंतिम तत्व कौन सा? सूर्य, अग्नि तत्व। तो प्रकृति में अग्नि तत्व सूर्य के रूप में विद्यमान है। तो ऐसे हो, बाबा ने भी कहा है, अंत में चारों तरफ जो दुख अशांति होंगी, रोती हुई आत्माएं आपके सम्मुख आए, उनका रूप बदल जाए, वो हंसती हुई चली जाए। अग्नि का सबसे बड़ा गुण यही होता है, हर चीज का रूप बदल देती है जो चीज उसमें डालो। तो हमारा ऐसा ज्वालामुखी रूप, अग्नि रूप बना हुआ हो, दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में डुबकियां लगाती हुई वो चली जाए। उसका रूप बदल दे हम, और वो हमारा रूप के द्वारा उसका रूप बदलेगा तब जब हमने ये ज्वालामुखी रूप अपना धारण किया होगा। ज्वालामुखी माने ऐसी स्थिति जहां पर कि बस कोई भी इतना हीट हो, ऐसी चीज हो, उसका रूप बदल जाए। तो इस तरीके से बाबा का यही देखा, इसीलिए अंत में भी ना शरीर आत्मा चली गई, लेकिन पांच तत्व उन्होंने अंत तक 72 घंटे तक बाबा का पूरा साथ देते रहे जब तक अग्नि संस्कार नहीं हुआ। यह है प्रकृति जीत का प्रतीक। जो बाबा कहता है ना, हम भी मन जीते जगत जीत बन रहे हैं, तो जगत के अंदर प्रकृति तो आई गई ना। जगत में कोई मनुष्य ही थोड़ी है, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति, पेड़ पौधे सब उसके अंदर आ गए। तो इस प्रकृति को भी जीतना, क्योंकि हमारा सबसे निकट का साथी ये शरीर है। ये पांच तत्व जो है, ये सतयुग के आदि से लेकर, शरीर तो उसी से बनता है, तो उनके साथ हमें रहना है, रहे हुए हैं, तो इन तत्वों के साथ मित्रता ऐसी। तो बाबा का अंत मते, अंत में जब कुछ भी नहीं होगा, ये शरीर से भी अटैचमेंट नहीं होगा, शरीर के व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ किसी से भी नहीं होगा, तो फिर देखो ये अपनी अति सतो प्रधान स्थिति में आत्मा भी होगी और शरीर भी होगा और अंत मते सोगति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
शांति, अंत में तीसो गति। अपने साकार बाबा की बातें सुनते हुए सब मग्न हो गए और प्रेरणा भी ली कि हमें भी ऐसी स्थिति बना। बहुत अच्छी तरह से आंखों देखा, हाल हमें सुनाया। हम सब एक हाथ की ताली से धन्यवाद अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।